बच्चों, किसी जंगल में एक तालाब था जिसमें बहुत सी बत्तखें और उनके प्यारे प्यारे बच्चे सारा दिन तैरा करते थे। ये सारी बत्तखें मज़े से चारों तरफ घूमती फिरती सिवाय एक बत्तख के, जो बेचारी बहुत दिन से अंडों पर बैठी हुई थी। उसे अंडे सहते सहते काफ़ी दिन गुजर गए थे और वो अकेली बैठी बैठी उकता गई थी। वो दिल ही दिल में अपनी साथी बत्तखों को कोसती, अरे उनमें से कोई निगोड़ी थोड़ी देर के लिए मेरे पास आकर बैठ जाया करे तो कुछ वक्त गपशप में भी गुजर जाए, मैं यूँ अकेली बोर तो ना हूँ। मगर आखिर उसके इंतज़ार की घड़ियाँ भी ख़त्म हुई और एक दिन अचानक उसके नीचे रखे हुए अंडों में से आवाज़ें आना शुरू हो गईं। ये प्यारी प्यारी आवाज़ें सुनकर उसका जी खुशी से भर गया, क्योंकि उसका मतलब ये था कि अंडों में से बच्चे निकल रहे हैं। बत्तख ने अंडों पर से हट कर देखा तो सभी अंडों में से बच्चों ने अपने सर निकाल लिए थे और आहिस्ता आहिस्ता छिलकों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। उनकी मीठी मीठी आवाज़ों से ऐसा मालूम होता था जैसे चांदी की घंटियां बज रही हों। थोड़ी ही देर में सब के सब बच्चे अंडों में से बाहर निकल आए। उनमें से एक ने जमाही लेकर कहा, आहा, ये बाहर की दुनिया कितनी बड़ी है। दूसरा बोला, हाँ, अंडे के अंधेरे खोल से निकलकर यहाँ बाहर कितनी फैली हुई जगह नज़र आती है। उनकी माँ बत्तख अपने नन्हे मुन्ने बच्चों की ये बात सुनकर हंसने लगी, अरे तुम समझते हो कि सारी दुनिया बस यही है जो तुम्हें यहाँ नज़र आ रही है। अभी तो यहाँ से आगे एक बहुत बड़ा बाग है और उससे भी आगे बड़े बड़े खेत हैं, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये कहकर बत्तख चलने ही वाली थी कि उसे अपने करीब पड़ा हुआ एक और अंडा नज़र आया। उस अंडे को देखकर बत्तख को बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि उसका ख्याल था कि उसके सभी अंडों में से बच्चे निकल आए हैं। एक और ताज्जुब की बात ये थी कि ये अंडा दूसरे अंडों से काफ़ी बड़ा था। पहले तो बत्तख ने सोचा कि उस अंडे को यूं ही पड़ा छोड़कर चली जाए, मगर उसका दिल कहता था कि कुछ भी हो, ये मेरा फ़र्ज़ है कि इस अंडे को भी सहने बैठ जाऊँ ताकि उसमें से भी बच्चा निकल आए। चुनाचे वो इस अंडे को भी अपने नीचे हिफाजत से रखकर सहने बैठ गई और दिल ही दिल में सोचने लगी कि अब न जाने उसमें से बच्चा निकलने के लिए मुझे कितने दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा। वो सोच ही रही थी कि उसकी मिलने वाली एक बूढ़ी बत्तख उधर आ निकली। एह बिटिया, तुम अब तक बैठी अंडे से ऐ जा रही हो, लेकिन मैं देखती हूँ कि तुम्हारे बच्चे तो सब निकल आए हैं। माशाल्लाह, कैसे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, अल्लाह इनकी उम्र बढ़ाए। हाँ अम्मा, और तो सब अंडों में से बच्चे निकल आए, लेकिन मुझे बाद में एक अंडा नज़र आया जिसमें से अभी बच्चा नहीं निकला है, मैं उसी को बैठी सह रही हूँ। ओए अल्लाह, ये कितना बड़ा अंडा है, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे ये तुम्हारा नहीं किसी शुतुरमुर्ग का है। मेरे ख्याल में तुम इसे सहने की फिक्र में मत पड़ो, इससे तुम्हें बेकार में परेशानी होगी। नहीं अम्मा, ये मेरा फ़र्ज है कि मैं उसे भी सहकर उसमें से बच्चा निकालूं। ए बिटिया, जैसी तुम्हारी मर्जी। बूढ़ी बत्तख तो अपना सर हिलाती हुई चल दी और हमारी रहम दिल बत्तख उस अंडे को सहती रही। लेकिन उसे ज़्यादा वक्त इंतज़ार नहीं करना पड़ा, क्योंकि कुछ ही वक्त गुजरने के बाद उस अंडे में से भी आवाज़ आई। ये आवाज़ सुनकर वो खुश हो गई। उसके देखते ही देखते उस अंडे में से एक बच्चे का सर बाहर निकला। मगर बत्तख को ये देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि उस नए बच्चे का सर उसके दूसरे बच्चों से बहुत बड़ा था। ज़रा सी देर में उस बच्चे के दो बाजू भी बाहर निकल आए और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा बच्चा निकल आया। बत्तख अम्मा उसे देखकर पहले तो बहुत घबराई कि ये मेरा ही बच्चा है या कोई और बला है, मगर फिर उसे इस बच्चे पर भी प्यार आने लगा और वो उसे गले लगाकर बोली, मेरे बच्चे तू कैसा ही बेडोल सही, फिर भी कितना अच्छा लगता है। वो बड़ी भी कहती थी कि तू किसी शुतुरमुर्ग का बच्चा है, लेकिन ये भी अभी पता चल जाएगा। चलो बच्चों, तुम सब के सब पानी में चलकर तैरो, ताकि मैं देखूं कि तुम में से कौन कौन तैर सकता है। सब बच्चे एक एक करके पानी में उतर गए और लगे मजे से डुबकियां लगाने और शप शप छपाके मारने। उन्हीं के साथ वो बड़ा सा बेडोल बच्चा भी मजे से डुबकियां खाता और तैरता रहा। ये बात देखकर बत्तख अम्मा को यकीन हो गया कि वो बच्चा किसी शुतुरमुर्ग का नहीं है, क्योंकि वो मेरे और बच्चों की तरह पानी में खूब तैरता है। बत्तख ने अपने सब बच्चों को पास बुलाया और बोली, बच्चों चलो अब मैं तुम्हें तालाब की और बत्तखों से मिलाऊं। तुम लोग ज़रा अपने पर पुर्जे ठीक कर लो और गर्दनें सीधी उठा लो, बस ये ठीक है। चलो 1 2 3। उस बत्तख के सब बच्चे जब उसके पीछे पीछे एक कतार में कदम मिलाते हुए चले, तो तालाब के आसपास रहने वाले और सब जानवरों की नज़रें उन पर पड़ीं। ख़ास तौर पर जब बत्तखों ने उन्हें देखा तो आपस में घुसर फुसर करने लगीं। लो बहन, ये एक और घराना यहाँ बढ़ गया, अब हम सब के खाने की और भी मुश्किल पड़ जाएगी। लो और देखो, ये पीछे पीछे कैसा बड़ा सा और बेडौल बच्चा चला आ रहा है। ये तो बत्तख का बच्चा मालूम ही नहीं होता, ना जाने क्या भला है। मैं अभी अपने मियाँ को उसे दिखाती हूँ। ये कहती हुई वो अपने मियाँ बत्तख के पास पहुँची और उससे कहा, देखना जी, ये ना जाने किस जात का बच्चा है, हमारे बीच में रहने को आ गया है, उसकी खबर तो लो। मियाँ बत्तखे ने अपनी बीवी की ये बात सुनकर उसकी हाँ में हाँ मिलाई और झट उस नन्हे बच्चे पर चढ़ दौड़े। बत्तख अम्मा ने जो अपने बच्चे पर यह हमला होते देखा तो उसके बचाव के लिए मुकाबले पर जम गई और दौड़ते हुए बत्तखे पर चीखी, चल दूर हट मुए जालिम, मेरे बच्चे पर क्यों चढ़ा आ रहा है। अरे ये कोई बत्तख का बच्चा नहीं, ज़रा इसकी सूरत तो देखो। अरे तुझे इससे क्या, ये जैसा भी है मेरा बच्चा है, तू जाके खुद आईने में अपनी शक्ल देख। बत्तखा बड़बड़ाता हुआ अपने घर को चल दिया। उस बेचारे बेडौल बच्चे से उन बत्तखे मियाँ ही को नहीं बल्कि पास पड़ोस के और सब जानवरों को भी जैसे चिढ़ हो गई थी। यहाँ तक कि मुर्गे मुर्गियों ने भी अपनी अपनी जगह कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। अरे ज़रा देखो तो सही, ये बत्तख के अंडे से कौन बला निकल आए, ये अजीब सा जानवर तो हमारे बीच में रहने के काबिल नहीं। उनमें से कुछ तो बत्तख अम्मा की नज़र बचाकर उस गरीब बच्चे को ठोंगे मारती और कहती, निकल कलमुए यहाँ से। और तो और उसके दूसरे छोटे भाइयों ने भी ऐसा जाहिर किया जैसे उन सबको उससे शर्म आती है, और उन्होंने आपस में तय किया कि हम उसके साथ नहीं खेलेंगे। उसकी माँ बार बार उसे तसल्ली देती, बेटा तू किसी के भी कहने की परवाह ना कर, मैं तो तुझे अपना ही बच्चा समझती हूँ ना, आखिर तू भी औरों ही की तरह से तैर सकता है, फिर अगर तू इतना खूबसूरत नहीं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मगर बच्चा रोते हुए जवाब देता, नहीं अम्मा, उससे बहुत कुछ होता है, अगर यहाँ मैं किसी को अच्छा नहीं लगता और कोई भी मेरे साथ खेलना और तैरना नहीं चाहता तो मुझे यहाँ से चला ही जाना चाहिए। आखिरकार उस बेचारे ने यही किया और एक रोज़ अपनी माँ और भाइयों को छोड़कर चुपके से अकेला निकल पड़ा। ना जाने कितनी देर तक वो यूं ही तैरता चला गया। आखिर चलते चलते वो एक ऐसे दलदल के किनारे पहुँच गया जहाँ सब जंगली बत्तखें और मुर्गाभियाँ रहती थीं। उसने सोचा कि यहाँ मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, लिहाजा वो यहीं लेटकर सो गया। जब उसकी आँख खुली तो उसके चारों तरफ मुर्गाभियाँ जमा थीं। उन्होंने इस बच्चे को प्यार से सलाम किया और बोली, बच्चे तुम कौन हो? मेरा ख्याल है कि मैं एक बत्तख का बच्चा हूँ, और आप लोग कौन हैं? हम सब जंगली बत्तखें हैं। वैसे तुम हमें बत्तख के बच्चे तो मालूम नहीं होते, मगर खैर अगर तुम हमारे दूर के रिश्तेदार भी हो तो भी खुशी से हमारे साथ रह सकते हो। बच्चा ये सुनकर बहुत खुश हुआ, मैं खूब अच्छी तरह तैर सकता हूँ और आप सबके लिए कोई बोझ नहीं बनूंगा। वो अभी ये बात कह ही रहा था कि अचानक एक बड़े जोर की आवाज़ आई, जिसे सुनते ही वो सब एकदम वहाँ से उड़ गईं। लेकिन देखते ही देखते उनमें से कई एक तड़पती हुई ज़मीन पर आ पड़ी। ये ज़ोरदार आवाज़ें कुछ शिकारियों की बंदूकों की थीं, जो मुर्गाबियों का शिकार करते हुए इधर आ निकले थे। बेचारे बच्चे को ये देखकर बहुत ही दुख हुआ कि उसे सहारा देने वाली जंगली बत्तखें उसके सामने मरी पड़ी थी। शिकारियों की फायरिंग से सहमा हुआ बच्चा एक तरफ को जाकर छुप गया। ज़रा सी देर में ये खौफनाक आवाज़ें आना बंद हुईं तो वो हिम्मत करके फिर आगे बढ़ा, लेकिन उसी वक्त एक दूसरी आफत आ गई। एक कुत्ता जो उधर से गुजर रहा था, उसने जब उस बच्चे को अकेले देखा तो घुर्रा कर झपटा और उसे अपने मुंह में दबोच लिया। बेचारे बच्चे को यकीन हो गया कि अब उसका खात्मा यकीनी है, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। एक ही लम्हे बाद न जाने क्या सोचकर कुत्ते ने उसे अपने दांतों में से छोड़ दिया। वो पट से ज़मीन पर उलट कर गिर गया। यूँ अपनी जान बच जाने पर उसे खुशी तो हुई, लेकिन ये सोच कर दुख भी बहुत हुआ कि मैं इतना बदसूरत हूँ कि एक कुत्ते ने भी मुझे पसंद नहीं किया। वो गमज़दा और निढाल होकर उठा और एक तरफ चल दिया। उसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे कोई गैबी ताकत उसे किसी ख़ास तरफ ले जा रही हो। चलते चलते वो बहुत दूर एक ऐसे इलाके में पहुँच गया जहाँ दूर दूर तक पानी भरा हुआ था। उसने खुशी से एक चीख मारी और मज़े ले लेकर उस पानी में तैरने लगा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि कुछ राजहंस उसकी जानब तैरते चले आ रहे हैं। उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ये देखा कि दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी और ख़ूबसूरत नस्ल की बत्तखें भी होती हैं। एक शान से गर्दन ताने हुए पानी में तैरती वो उसे बहुत अच्छी लगी। कुछ देर तैरने के बाद सारे राजहंस एक अजीब सी आवाज़ निकालकर हवा में उड़ गए। ये आवाज़ सुनकर बच्चा चौंक पड़ा, क्योंकि ये बिल्कुल वैसी ही आवाज़ थी जैसे उसके अपने गले से निकलती थी। अब तो उसने तय कर लिया कि उन्हीं खूबसूरत परिंदों के साथ ज़िंदगी गुजारेगा। वो ये सोच ही रहा था कि करीबी झाड़ियों में उसे सरसराहट सी महसूस हुई। उसने सर उठाकर देखा तो उसे झाड़ियों में एक शिकारी घात लगाए बैठा नज़र आया। शिकारी की बंदूक का रुख उन बेखबर तैरते राजहंसों की तरफ था। बंदूक को देखकर बच्चा खौफजदा हो गया। उसे मुर्गाबियों का अंजाम याद आ गया। अगले ही लम्हे उसने राजहंसों को बचाने का फैसला किया और शिकारी की बंदूक पर फड़फड़ा कर झपट पड़ा। बंदूक में से एक ज़ोरदार फायर हुआ, मगर उस वक्त तक बंदूक का रुख फिर चुका था। राजहंस तो बच गए, मगर वो खुद ज़मीन पर गिर पड़ा। उसे यूँ महसूस हुआ जैसे उसका एक बाजू टूट चुका है। उसे अपने ज़ख्मी होने की फ़िक्र ना थी। तकलीफ़ के बावजूद वो ये सोच कर खुशी महसूस कर रहा था कि उसकी कोशिश से कई प्यारी प्यारी जानें बच गई थीं। ये सोचते सोचते वो बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद सब हंसों ने आकर बच्चे को घेर लिया। अरे देखो कितना बहादुर बच्चा है, इसने अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचाई है। हाँ ये हमारा मोहसिन है। अरे तुम सब बातें ही करते रहोगे, देखो ये ज़ख्मी है और बेहोश है, इसे उठाकर अपने घोंसले में ले जाओ, हम इसके अच्छा होने तक इसकी देखभाल करेंगे। चुनाचे वो उसे बड़े प्यार से उठाकर अपने आरामदेह घोंसले में ले गए और उससे कहा अब तुम्हारा जब तक जी चाहे हमारे साथ रह सकते हो। बच्चा उनकी ये बात सुनकर खुशी से उछल पड़ा। मैं तो जब तक ज़िंदा हूँ आप लोगों के साथ ही रहूँगा। आहिस्ता आहिस्ता उसके पर का ज़ख्म ठीक हो गया। एक दिन वो हिम्मत करके घोंसले से बाहर निकला, मगर घोंसला बहुत ऊंचाई पर होने की वजह से वो अचानक फिसल कर नीचे गिरने लगा। मगर ये क्या, वो तो उड़ भी सकता था। वो खुशी से आवाज़ें निकालता हुआ अपने पर फैलाए उड़ता रहा और हवा में कई चक्कर लगाकर झील के पानी में उतर गया और अपने राजहंस दोस्तों के साथ तैरने लगा। उसकी आवाज़ों के जवाब में हंसों ने भी वैसी ही आवाज़ें निकाली। इन आवाज़ों को सुनकर उसे पहली दफ़ा ये मालूम हुआ कि वो किसी बत्तख का बेडौल बच्चा नहीं, बल्कि एक हंस है जो उन छोटी छोटी बत्तखों के बीच में रहकर ऐसा भद्दा और बेडौल मालूम होता था। कुछ ही दिनों में उसके पर अच्छी तरह निकल आए और उसका बदन सफ़ेद बादलों की तरह चमकदार और ख़ूबसूरत निकल आया और वो उन सब के बीच में उसी शान से तैरने लगा।